मैं सुधीर कुमार शर्मा, बीए पार्ट थर्ड, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, आज आपको मुगलों के समय की स्थापत्य कला के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो एलपी शर्मा के किताब में संकलित है। कला, पहला स्थापत्य कला। ललित कलाओं के विकास की ओर मुगल बादशाहों ने पूर्ण ध्यान दिया। उनमें श्रेष्ठ स्थान स्थापत्य कला कोष्टक वास्तुकला का है। मुगल बादशाहों को इमारतें बनवाने का शौक था। शाहजहां के समय तक अनेक ऐसी इमारतों का निर्माण हुआ जो अभी तक स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। जिस काल को मुगल स्थापत्य कला पुकारा गया वह मध्य एशिया की इस्लामी कला और भारतीय हिंदू कला का मिश्रित रूप है। मुगलकालीन स्थापत्य की मुख्यतम विशेषता संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात से की गई जड़ावत, पित्रादुरा एवं महलों तथा विलास भवनों में बहते पानी का उपयोग। अकबर ने इस कला के निर्माण में सहयोग दिया। जिस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में अकबर का दृष्टिकोण राष्ट्रीय था, उसी प्रकार ललित कलाओं के क्षेत्र में भी उसका कोण दृष्टिकोण राष्ट्रीय रहा और उसने इच्छा एवं सुविधा के अनुसार हिंदू कला और कलाकारों का उपयोग अपने इमारतें बनवाने के लिए किया। उससे पहले की दिल्ली सुल्तानों के समय में भी इस्लामी कला को हिंदू कला प्रभावित कर चुकी थी। अकबर की उदारता ने उसे और आगे बढ़ा दिया। हिंदू कलाकारों को बहुसंख्यक मात्रा में होना और भारतीय जलवायु के अनुकूल इमारतों का निर्माण करना भी इस्लामी और हिंदू कला के निर्माण के लिए उत्तरदायी बने। इस प्रकार अकबर के समय से इस्लामी और हिंदू कला के मिश्रण से जिस स्थापत्य कला का विकास हुआ उसे राष्ट्रीय स्थापत्य कला स्वीकार किया जाता है। इस कला में इस्लामिक कला से गोल गुंबद, ऊंची ऊंची मीनारें और मेहराब, छतें, खम्भे और नुकीली मेहराबें ली गई थीं। आरंभ में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया तथा इमारतों को विशाल एवं मजबूत बनाने पर बल दिया गया, लेकिन बाद में इन इमारतों में संगमरमर सफ़ेद रंग के प्रयोग को सम्मिलित किया गया तथा उन्हें नक्काशी, सोने चांदी के प्रयोग और रंगीन बेल बूटों आदि के द्वारा अत्यधिक सुंदर बनाने का प्रयत्न किया गया। यह सभी कुछ मिलकर मुगल स्थापत्य कला श्रेष्ठ बनी और इस समय में भव्य इमारतों का निर्माण हुआ। प्रथम मुगल बादशाह बाबर इमारतें बनवाने का शौकीन था और उसने पाया कि भारत में मजदूरी बहुत सस्ती है। उसके समय में हजारों मजदूरों ने आगरा, बयाना, धौलपुर आदि स्थानों पर इमारतें बनाने का कार्य किया। बाबर राजा मान सिंह और राजा विक्रमाजीत द्वारा बनवाई गई ग्वालियर की इमारतों से बहुत प्रभावित हुआ तथा यद्यपि कला का पारखी होने के कारण वह उनकी दोषों को समझ सका था, अपने अल्प शासन काल में बाबर ने बड़ी इमारतें को बनवाने का कार्य नहीं किया। उसने कुएं, तालाब, फव्वारे, स्नान गृह आदि ही बनवाए जो समय के प्रभाव के कारण नष्ट हो गए अथवा सूरवंश के शासकों द्वारा नष्ट कर दिए गए। उसके समय की केवल 3 मस्जिदें प्राप्त होती हैं। उसके द्वारा बनवाई गई एक मस्जिद पानीपत में काबुली बाग में है और दूसरी रुहेलखंड में संभल में है। ये दोनों मस्जिदें 1529 ईस्वी में तैयार की गई थी। उसके समय की तिफरी मस्जिद अयोध्या में है। परंतु इन तीनों में से किसी को भी कला का श्रेष्ठ नमूना नहीं माना जा सकता। हुमायूं भी कला के विकास में कोई दृष्टि से कोई सराहनीय कार्य नहीं किया। दीन पनाह नामक उसका महल शेर शाह द्वारा नष्ट कर दिया गया और आगरा तथा फतेहाबाद में बनवाई गई उसकी दो मस्जिदें कला के अच्छे नमूने माने जा सकते हैं। शेर शाह द्वारा बनवाया गया सहसराम कोष्टक में बिहार का स्वयं का मकबरा मुगल इमारतों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, परंतु वह इस युग की कला का श्रेष्ठतम नमूना है। एक विशाल झील के मध्य में बना हुआ शेर शाह का यह मकबरा उसके व्यक्तित्व का प्रतीक, तुगलक बादशाहों की इमारतों की सादगी और शाहजहां की इमारतों की स्त्रियोचित सुंदरता के बीच की कड़ी, उत्तर भारत की इमारतों में एक श्रेष्ठ इमारत आदि पुकारा गया। हिंदू और इस्लामी कला का प्रभाव इससे स्पष्ट होता है। दिल्ली में पुराना किला और उसमें बनी हुई मस्जिद कोष्टक में किला एक कुहना भी शेर शाह ने बनवाई, परंतु पुराना किला तो अब अवशेष मात्र ही है। अकबर के समय में बनी हुई सबसे पहली इमारत दिल्ली में बना हुआ हुमायूं का मकबरा है, जिसे अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने फारसी कलाकार मीरन मिर्जा गियास की सेवाएं उपलब्ध करके बनवाया था। इस पर फारसी कला का प्रभाव है। लंबी गर्दन वाले गुंबद की इमारत की कला की समता समरकंद में बने हुए तिमूर या बीबी खानम के मकबरे से की जा सकती है। मकबरे के चारों ओर चार बाग की रचना की गई है। अपनी इमारतों को बगीचों का निर्माण करके सुंदर बनाना मुगल स्थापत्य कला की एक मुख्य विशेषता रही। उस विशेषता का प्रयोग इस मकबरे में भी किया गया। इमारत की मुख्य कक्ष से पानी के बहने के लिए नालियां निकाली गईं, जिनके बीच में बराबर दूरी पर फव्वारे बनाए गए। मकबरे में आने जाने के लिए पक्के रास्ते बनाए गए, जिनके किनारे किनारे फूलों की क्यारियां हैं। इमारत में विस्तृत रूप से घास के लान भी बनाए गए हैं। मुगलों द्वारा आरंभ में बनाई गई इमारतों में हुमायूं का मकबरा सबसे सुंदर और मजबूत भी है, जिसके कारण वह आज तक पूर्णतया सुरक्षित है। हुमायूं का मकबरा बनवाने में अकबर ने कोई भाग नहीं लिया था। उसके पश्चात की बनी सभी इमारतों पर अकबर के व्यक्तित्व और विचारों की छाप है। अकबर के समय में आगरा, लाहौर और इलाहाबाद के किले बनवाए गए। उनमें बहुत सी इमारतें भी बनवाई गईं और फतेहपुर सिकरी के नगर और उसमें अनेक इमारतों का निर्माण किया गया। आगरा और लाहौर के किले तथा फतेहपुर सिकरी की अनेक इमारतें अब भी हैं, लेकिन इलाहाबाद के किले की बहुत सी इमारतें नष्ट हो गई हैं। इन सभी इमारतों के बनाने में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। इनमें हिंदू तथा इस्लामी कलाओं का खुलकर प्रयोग हुआ है। आगरा का किला करीब 15 वर्षों में बना और इसी के साथ साथ लाहौर के किले का भी निर्माण हुआ। इलाहाबाद का किला कुछ समय बाद का है। इनकी दीवारें इतनी सुदृढ़ बनाई गई हैं कि पत्थरों के जोड़ों के बीच में से एक बाल तक नहीं निकल सकता। आगरा के किले में पहले चार प्रवेश द्वार थे, परंतु बाद में दो बंद कर दिए गए। शेष दो द्वारों में से एक दिल्ली द्वार और दूसरा अमर सिंह द्वार कहलाया। किले का घेरा करीब 1.5 मील है, जिसमें अकबर ने लगभग 500 इमारतें बनवाई थी। इनमें से बहुत सी इमारतों को शाहजहां ने तुड़वा कर बनवाया अथवा उनके स्वरूप को बदल दिया। इनमें से प्रमुख जहांगीर महल और अकबर महल है। आगरा के किले की साधारण रूपरेखा राजा मान सिंह द्वारा बनाए गए ग्वालियर के किले का है और इनमें बनी इमारतें भी हिंदू कला से प्रभावित हैं। लाहौर के किले की रूपरेखा भी आगरा के किले के समान है, यद्यपि उसकी इमारतों में सजावट अधिक की गई है, परंतु अकबर की सुंदरतम इमारतें फतेहपुर सुकरी कोष्टक में आगरा के निकट में बनवाई गई। यद्यपि आधुनिक समय में फतेहपुर सिकरी एक उजड़ा हुआ स्थान है, लेकिन अकबर की कला को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से व्यक्ति वहां जाते हैं। वहां की इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल, खास महल, जोधाबाई का महल, मरियम महल, बिरबल महल, हिरन महल, जामा मस्जिद, हाथी पोल, बुलंद दरवाजा और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा प्रमुख है। इसके अतिरिक्त वहाँ सैकड़ों इमारतें हैं, वे सभी सुंदर और संभवतया एक ही स्थान पर इतनी सुंदर इमारतों का किसी अन्य स्थान पर पाया जाना संभव नहीं है। पांच मंजिल के पंचमहल में जितने भी स्तंभ हैं वे सभी विविध प्रकार के हैं। प्रत्येक स्तंभ की सजावट एक दूसरे से भिन्न है और प्रायः कलश, घंटियां, फूल और पत्तियों को बनाया गया है। तुर्की सुल्ताना का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। जोधाबाई का महल यह संकेत देता है कि मुगल परिवार के सदस्य रहने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था पसंद करते हैं। अकबर की पत्नी मरियम के महल पर फारसी कला का प्रभाव है। उसके स्तंभ और दीवारें बंदर, हाथी, चीता जैसे जानवरों और विभिन्न रंगों के पत्थरों में मानव आकृतियों से सजाई गई थी। जामा मस्जिद में भारत में बनी हुई मंदिरों में मस्जिदों में श्रेष्ठ स्थान रखती है। भूमि से 176 फीट ऊंची और पहले चबूतरे से 134 फीट ऊंचाई का बुलंद दरवाजा अपने आप में एक विशाल और सुंदर इमारत मानी जाती है। शेख सलीम चिश्ती की कब्र पर सीपीयू से बने हुए स्तंभ सौंदर्य की दृष्टि से श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। निसंदेह फतेहपुर सिकरी में बनी इमारतें मुगल काल की इमारतों में बनी हुई बहुत श्रेष्ठ मानी गई हैं। इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है, फतेहपुर सिकरी के समान न तो उससे पहले ही कुछ बन सका और न उसके बाद कुछ बनना संभव है। यह पत्थरों में ढाला गया एक रोमांस है। अकबर ने अटक, मेड़ता, अजमेर आदि अन्य स्थानों पर भी कुछ किले, मस्जिदें, फवहारे आदि बनवाए। जहांगीर को स्थापत्य कला के स्थान पर चित्रकला और बागीचे लगाने का शौक था, फिर भी उसके समय में कुछ इमारतों का निर्माण की हुआ। इसके अतिरिक्त स्थापत्य कला उसी समय पे एक नवीन मोड़ लेती है। संगमरमर, सफ़ेद रंग के प्रयोग और उस पर अधिकतम पच्चीकारी जो शाहजहां के समय में श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंच गई। जहांगीर के समय में आरंभ हुई। जहांगीर के समय में बनी हुई सबसे पहली इमारत आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। इसकी योजना अकबर ने बनाई थी, परंतु जहांगीर ने उसमें थोड़ा परिवर्तन किया और उसे पूर्ण कर लिया। चारों तरफ से एक मील के घेरे में फैले हुए विस्तृत बागीचे के मध्य में बनाया पांच मंजिल का मकबरा अकबर के विशाल और उदार हृदय का प्रतीक है। दक्षिण की ओर उसके प्रवेश द्वार हैं और इसके चारों कोने पर संगमरमर के बने हुए चार गुंबद हैं। चार मंजिलें पांच चबूतरे पर बनी हुई हैं, जिनमें से प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल से छोटी होती चली गई है। सबसे ऊपर की मंजिल में संगमरमर से बनी हुई दीवारों से घिरा एक आंगन है, जिसमें फारसी में अकबर की शासन की प्रशंसा में लिखे गए 36 दोहे, दो पक्त की कथाएं। इस इमारत के ऊपर कोई गुंबद नहीं है। अकबर के मकबरे की योजना सरल और सादी होते हुए भी बहुत प्रभावशाली है। हविल ने लिखा है, अकबर का मकबरा भारत के महान शासक के लिए उपयुक्त मकबरा है। इसे इस्लामी, हिंदू, ईसाई और इनमें से भी अधिक बौद्ध कला का भी मिश्रित रूप माना जा सकता है। जहांगीर के समय में दूसरी इमारत लाहौर में स्वयं अकबर का स्वयं मकबरा है। इसके अधिकांश भाग को उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी बेगम नूरजहां ने बनवाया था। यह मकबरा भी एक विस्तृत बागीचे में बना हुआ है, परंतु यह बहुत प्रभावशाली नहीं है। जहांगीर के समय में बनी हुई महत्वपूर्ण इमारत आगरा का एतमादुल्ला का मकबरा, इसे नूरजहां ने अपने पिता एतमादुद्दौला की कब्र पर बनवाया था। अकबर का मुख्य भाग पूर्णतया सॉरी कन्फर्मेशन के लिए एक बार फिर, मकबरे का मुख्य भाग पूर्णतया सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है और इस ढंग की बनी हुई यह पहली मुगल इमारत है। इसमें अधिक पच्चीकारी की गई है और संगमरमर के अतिरिक्त अन्य कीमती पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है। दो मंजिल की यह इमारत एक विस्तृत बागीचे के मध्य में बनी हुई है। यह मकबरा अकबर और शाहजहां के समय में मध्य की कड़ी है। यह इतना सुंदर है कि अनेक व्यक्ति इसे मुगल इमारतों में ताजमहल के बाद दूसरा स्थान प्रदान करते हैं। पर्सी ब्राउन ने इसे अपनी तरह की इमारतों में सबसे अधिक पूर्ण माना है। शाहजहां के समय में मुगल स्थापत्य कला अपनी श्रेष्ठता पर पहुंच गई। सफ़ेद संगमरमर और अन्य कीमती पत्थरों का प्रयोग, अधिकतम पच्चीकारी, कीमती रंगों का प्रयोग और उसके समय की कला की विशेषता बन गए। उसकी इमारतों से ऐसा प्रतीत होता है मानो जौहरी और चित्रकार्य के कार्यों को पत्थरों में जड़ दिया गया हो। शाहजहां को स्थापत्य कला का शौक था। उसने न केवल नवीन इमारतों का निर्माण कराया बल्कि आगरा और लाहौर के किले में उसने अकबर द्वारा बनवाई गई इमारतों को तुड़वा कर नवीन इमारतें भी बनवाईं। आगरा के किले में दीवाने आम, दीवाने खास, मच्छी भवन, शीश महल, खास महल, अंगूरी बाग, झरोखा दर्शन का स्थान, शाह बुर्ज, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद आदि। आगरा में ही जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद तथा लाल किला और उसमें बनी हुई इमारतें जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, मोती महल, हीरा महल, रंग महल, नहरे बहिश्त आदि और लाहौर के किले में दीवाने आम, शाह बुर्ज, शीश महल और नौलखा महल और ख्वाबगाह आदि शाहजहां के समय की मुख्य इमारतें हैं। इनके अतिरिक्त काबुल, कश्मीर, अजमेर, कंधार, अहमदाबाद आदि विभिन्न स्थानों में भी शाहजहां ने अनेक मस्जिद मकबरे बनवाए, परंतु शाहजहां की श्रेष्ठतम इमारत आगरा में अपनी बीबी मुमताज महल की याद में बनवाया गया संसार प्रसिद्ध ताजमहल है, जिसे 22 वर्षों में लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया गया था। शाहजहां के द्वारा बनवाई गई आगरा के किले की सभी इमारतें बहुत सुंदर हैं, परंतु इनमें श्रेष्ठतम स्थान मोती मस्जिद का है। दूध की तरह सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई यह मस्जिद अपने नाम मोती की भांति है। आगरा की जामा मस्जिद शाहजहां की पुत्री जहानारा के द्वारा बनवाई गई थी। दिल्ली की लाल किले की इमारतें, उनमें पानी और फव्वारे का प्रबंध आदि इतना सुंदर था जैसा कि वहाँ एक स्थान पर लिखा है, अगर भूमि पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, स्वीकार करना पड़ता है। परंतु ताजमहल का स्थान इन सभी इमारतों में श्रेष्ठ है। एक विस्तृत बगीचे के उत्तरी भाग में सफेद संगमरमर की बनी हुई यह इमारत संसार की श्रेष्ठतम इमारतों में स्थान रखती है। भूमि से 22 फीट ऊंचे संगमरमर के चबूतरे पर बनी यह इमारत लगभग 108 फीट ऊंची है। यद्यपि उसका मध्य गुंबद 187 फीट ऊंचा है, चबूतरे के चारों कोने पर चार सफेद मीनारे हैं और उसकी बगल से यमुना नदी बहती है। मध्य के ऊपरी भाग में मुमताज महल और शाहजहां की नकली कब्र है और नीचे के भाग में उन दोनों की असली कब्र है। सुंदर पच्चीकारी से अलंकृत जालियां, बेल बूटों से सजी हुई दीवारों तथा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की दृष्टि से इमारत को एक इकाई का रूप प्रदान करने वाली कला न केवल ताजमहल के सौंदर्य को बढ़ाने वाली है, अपितु ताजमहल एक संपूर्ण इकाई के रूप में संगमरमर में ढाला गया एक स्वप्न है जो एक महान सौंदर्य का प्रतीक माना जा सकता है। शाहजहां मुमताज महल के सौंदर्य को एक मूर्ति में तो नहीं ढाल सकता था क्योंकि वह इस्लाम धर्म के विरुद्ध था, परंतु उसने उसके सौंदर्य को ताजमहल का निर्माण करके व्यक्त कर दिया। इसी कारण हावेल ने उसे भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है। उसने लिखा है, यह एक ऐसा महान विचार है जो स्थापत्य कला से नहीं बल्कि मूर्तिकला से संबंधित है। ताजमहल के निर्माण की योजना के बारे में यह धारणा गलत सिद्ध कर दी गई कि इसके नक्शे को बनाने में किसी यूरोपियन कलाकार ने सहयोग दिया था। यह प्रमाणित किया जा चुका है कि इसका मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसे शाहजहां ने नादिर उज असर की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब की ललित कलाओं में कोई रुचि न थी। उसके समय में किसी भी श्रेष्ठ इमारत का निर्माण नहीं हुआ। उसके में समय में बनी हुई इमारत लाहौर की बादशाही मस्जिद है, जिसे औरंगजेब ने संभवतया अपने निजी प्रयोग के लिए बनवाया होगा क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा है। एक अन्य इमारत औरंगाबाद में बना औरंगजेब की बेगम रबिया दौरानी का मकबरा है, उसमें ताजमहल की नकल करने का प्रयत्न किया गया है, परंतु यह प्रयत्न सफल नहीं हो सका। उसमें ताजमहल की नकल करने का प्रयत्न किया परंतु यह सफल न हो सका। उसके पश्चात मुगल स्थापत्य कला को विकास का अवसर प्रदान नहीं हुआ और उसकी स्थिति निरंतर गिरती चली गई। विभिन्न प्रांतों और बाद में स्वतंत्र हुए राज्यों में अनेक इमारतें बनी परंतु उनमें से अधिकांश नष्ट हो गए। उनमें से बची हुई इमारतों राज्यों में श्रेष्ठ स्थान ग्वालियर के मान सिंह, वृंदावन के गोविंद देव के मंदिर, जयपुर के हवा महल, बीजापुर के गोल गुंबद और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का है। मुगल काल में दक्षिण भारत के मुसलमान शासकों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में अच्छी इमारतों का निर्माण कराया गया। इनमें से अहमदनगर, बाग ए रौजा उसी के द्वारा बनवाया गया एक बाग और महल हस्त बहिस्त आठवां स्वर्ग, बीजापुर के शासक अली द्वारा बनवाई गई जामा मस्जिद, सुल्तान इब्राहिम द्वारा बनवाया गया स्वयं का मकबरा, आनंद महल, मिहतरू महल और जामा मस्जिद तथा गोलकुंडा के सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाए गए महल जैसे चंदन महल, हीरा महल आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इस कारण मुगल काल में स्थापत्य कला की श्रेष्ठतम उन्नति हुई और भव्य महल, मकबरे, मस्जिदें आदि बनी। मुगल स्थापत्य कला अपने में श्रेष्ठतम रही और उसने विभिन्न प्रांतीय स्थापत्य कलाओं को भी प्रभावित किया। यह कहना भूल होगी कि मुगलों की स्थापत्य कला मूलतया विदेशी थी। यह कहना अधिक सत्य है कि मुगल स्थापत्य कला की अपनी पृथक विशेषक। आपकी कन्फर्मेशन के लिए एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, अपनी पृथक पृथक विशेषता थी और विदेशी प्रभावों को अपने में सम्मिलित करते हुए भी उसका मूल स्वरूप भारतीय था। मुगलों द्वारा बनवाई हुई इमारतें टर्की, फारस और मध्य एशिया की इमारतों से भिन्न है। ताजमहल का निर्माण केवल भारत में ही हो सकता था और उसकी नकल करने का प्रयत्न किसी अन्य स्थान पर संभव नहीं हुआ। ताजमहल भारतीय मुगल स्थापत्य कला का नमूने है और इस कारण उसकी अपनी एक पृथक विशेषज्ञता है और इसी कारण यह संसार प्रसिद्ध है। इसी के साथ मैं सुधीर कुमार शर्मा आज मुगल स्थापत्य कला को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।